بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، امت کے بزرگ اور ہماری مقدس مائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جگہ جگہ خیر و برکت عطا فرمائے. ہر خیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، اور ہر شر جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو پناہ عطا فرمائے. جو ہماری زندگی کے ایام ہیں اللہ ان میں بہترین عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہر طرح کی خیر و برکت مال میں، اولاد میں، ہر شر سے حفاظت فرمائے. مجلس علم کے فضائل، جہاں پر علم اور ذکر کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر فرشتوں کی آمد ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مجلس میں کا ذکر فرماتے ہیں. جب ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد فرمائیں گے. جو آدمی دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اس کے راستے میں فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق دعاؤں میں لگ جاتی ہے. پرندے ہوا میں، مچھلیاں پانی میں، یہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. علم دین کا ایک باب، ایک چیپٹر سیکھ لینا، مثلا وضو کے مسائل، یہ ایسا ہے کہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھی. جس جگہ اللہ کا ذکر ہو وہ آسمان میں نور کی طرح چمکتے ہیں. اور جو لوگ صرف اللہ کے لیے ایک جگہ آئے اور انہوں نے بات سنی اور پھر واپس گئے اور کوئی غرض نہیں تھی، تو وہ لوگ قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایسا حشر ہمارا آپ کا بھی کروا دیں، آمین. جب ہم بیٹھیں تو اچھی اچھی اونچی اونچی نیتیں کر کر بیٹھیں. وقت تھوڑا ہے، عمل بھی کمزور ہے، لیکن نیت ایسی چیز ہے منٹوں میں آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی. کیونکہ اللہ کے دربار میں عمل گنے نہیں جاتے، کاؤنٹ نہیں ہوتے، گنتی کتنے آدمی بیٹھے تھے، کتنے دن لگائے، اللہ کے یہاں گنتی نہیں ہے، بلکہ اعمال تولے جاتے ہیں. کہ جو ایک آدمی بیٹھا ہے یا جو ایک بھائی یا بہن سن رہے ہیں ان کے دل میں کتنی طلب، کتنا شوق، کتنا اخلاص ہے، تو اللہ تعالیٰ طلب پہ عطا فرماتے ہیں. یہ بات ہم نے اپنے شیخ سے کئی بار سنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ طلب پر عطا فرماتے ہیں. جس کو شوق ہوگا وہ پہنچ جائے گا. تو نیت یہ ہے کہ امت کے ہر بھائی اور بہن ان سے اللہ راضی ہو جائیں اور اللہ کے اولیاء بن جائیں. کمزور ہیں، مشغول ہیں، عمل ٹھیک نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہے، پھر بھی شوق ہے کیسے ہم اللہ والے ہو جائیں، ہماری توبہ قبول ہو جائے، شیطان اور نفس کے بہکانے سے بچ جائیں، ہم ہر قسم کے گناہ سے بچ جائیں، غفلت، سستی، کاہلی دور ہو جائے، اور ہمارے دل میں ہر وقت جو ہے کوئی ذکر، کوئی اچھی نیت، کوئی دعا اس طرح جاری ہو جیسے لوگ اب باتیں سوچتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اس طرح اچھی باتیں بس جاری ہو جائیں ہمارے دل میں. اور ایسا ہو جاتا ہے، یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، تھوڑی توجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. ہماری زندگی میں سنت طریقے آ جائیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے میں نور ہے، ایسا نور، اور ہر ایک کام کے لیے سنت بتائی. یعنی بیت اللہ جانے کا طریقہ بھی بتایا کہ ایسے ایسے طواف کرو، ایسے ایسے ملیں گے ملین اور بلین، اور بیت الخلاء یعنی باتھ روم جانے کا بھی طریقہ بتایا کہ ایسے گئے پہلے بائیں پیر سے، واپس آئے دائیں پیر سے، یہ دعا پڑھی. یعنی کھانا کھانے کے بعد جو ہے انگلیوں کا چاٹنے کا طریقہ ہے وہ بھی سنت طریقے میں بتایا گیا کہ پہلے یہ انگلی چاٹیے، پھر یہ انگلی چاٹیے، پھر یہ انگلی چاٹیے، کوئی چیز چھوڑی نہیں. انشاءاللہ سنتوں کا سبق بھی پڑھیں گے. نیت یہ ہے کہ ہماری زندگی صراط مستقیم پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں، دین کی باتیں ہماری طبیعت بن جائیں. کوئی دلیل اور جو ہے پیچیدہ چیز کی ضرورت نہ ہو، بس ہمیں وہی اچھا لگتا ہے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا ہے. پھر ہمارے اندر صرف اپنے ہی لیے نہ ہو بلکہ پاس پڑوس میں، میرے خاندان میں، ہمارے چچا محمود، ہمارے خاندان میں کیسے دین پھیل جائے، یہ سب کے سب جنت کے اونچے درجات میں جانے والے بن جائیں، ساری امت کی، ساری محلے کی، ملک کی خیر خواہی ہمارے دل میں آ جائے کہ کیسے یہ سارے کے سارے اللہ کے محبوب بن جائیں. اور جو آدمی اس فکر میں، جو بھائی یا بہن اس فکر میں لگیں گے، اس کے لیے وہ خود بھی دعائیں کریں گے، دوسروں کو ترغیب دیں گے، تو ہوگا یہ کہ سب سے پہلے ان کو एक पाकीज़ा ज़िंदगी मिलेगी, हयातुन तय्यबा, उसमें उनकी दुआओं की कबूलियत होगी, कलील में बरकत होगी और हर किस्म के वसवसों से और डिप्रेशन से उनकी हिफाजत होगी, और उम्दा रिस्क मिलेगा और आसान आमदनी होगी। क्योंकि उनके जो जो लोग परेशान रहते हैं सुबह शाम महीने भर जिन चीज़ों में, जब आदमी उम्मत की खैरखाही के लिए कोई काम शुरू करे तो वो काम जिसको जो ज़ाती परेशानी के थे वो सब अल्लाह ताला आसान फरमा देते, और हमारी आखरत में आसान हिसाब हो, मग़फ़रत हो, जन्नतुल फिरदौस के ऊंचे दर्जात मिलें, ये हमारी नीयत हो कि आखरत में भी हर तरह के फ़ायदे हो, दुनिया में भी फ़ायदे हो, आखरत में भी फ़ायदे हो। इसमें यह है कि हम पूरी तवज्जो और तलब से, इतिकाद से दीन की बात सुने और जिन अल्लाह वालों की बातें हैं और हमें उनसे एहतराम हो, उनकी अकीदत हो, और हर बात जो है वो अल्लाह सुबहान व तआला की तरफ लौटती है। अल्लाह समीह है, बसीर है, खबीर है, आलिम है, सब कुछ देखने वाले, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ सुनने वाले। एक आदमी हरम शरीफ में बैठकर इबादत कर रहा है बहुत बिजली की रोशनी में, अल्लाह ताला उनको जानते हैं। इमाम काबा की आवाज़ जो है वो 10 लाख और में गूंज रही है हरम शरीफ में, अल्लाह ताला उनकी आवाज़ भी सुनते हैं। कोई बेचारा या कोई बहुत दूर दुनिया के कोने में जहाँ बिजली भी नहीं है, या किसी गांव में या किसी जजीरे में, और रात के अंधेरे में कहीं अपनी कोठरी में कोई बड़ी उम्र की कोई खातून उठकर या कोई बिस्तर में बैठ के अल्लाह को याद कर रही, अल्लाह ताला उनकी बात भी सुनते हैं, हर एक की बात सुनते हैं। यानी रात के अंधेरे में बिस्तर से उठे बगैर, आँख खोले बगैर, मुंह खोले बगैर, कोई दिल ही दिल में अल्लाह को याद करे, अल्लाह ये दे दीजिए, अल्लाह ऐसा कर दीजिए, अल्लाह ताला उसको भी जानते हैं। इतने यानी अल्लाह ताला बड़े हैं और हर एक मखलूक की बात सुनते हैं। तो मोहतरम माओ बहनों, हमारे मोजिज भाई, हर लम्हा ऐसा है कि एक सोने का सिक्का है आखरत की हमेशा रहने वाली जिंदगी के लिए नेकियों के पहाड़, और हर लम्हा ऐसा हम समझें कि हम महबूब रब्बुल आलमीन अल्लाह के दरबार में हैं, अल्लाह मेरी तरफ देख रहे हैं और उनके इतने एहसान हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, उनकी ऐसी बादशाहत है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, इतनी नेमतें हैं जिसको कोई गिन नहीं सकता, हर चीज़ देखते हैं, मेरी हर हरकत को जानते हैं, मेरे फ़ायदे को मुझसे ज़्यादा जानते हैं, ऐसा हम सोचें, अल्लाह ताला मेरे हकीम है, मेरे फ़ायदे को मुझसे ज़्यादा जानते हैं। दुनिया की तिजारत है, कोई दुकान है, वो चंद घंटे चलती है, फिर चंद घंटे बंद करना पड़ता है। आखरत की तिजारत जो है वो 24 घंटे चलती है। सुन्नत तरीके से कोई सोएगा तो सोना भी इबादत हो गया है, एक तहाई ज़िंदगी इबादत में तब्दील हो गई। आखरत की तिजारत हर वक्त चलती है, दुनिया की तिजारत में 10%, 20%, अरे भाई कितना मुनाफा हुआ, 30%, ज़्यादा से ज़्यादा डबल हो गया। आखरत की तिजारत में 10 गुना फ़ायदा, 70 गुना, 700 टाइम्स, 700 गुना फ़ायदा, लाखों करोड़ों के सवाब मिल रहे हैं। ये फ़र्क है दुनिया और आखरत की तिजारत में। हर एक दिन जो गुजरता है उसमें हम आखरत के करीब होते चले जा रहे हैं, आखरत के करीब होते चले जा रहे हैं। तो जो करीम बादशाह अल्लाह सुबहान व तआला जिसका दोस्त बन जाए तो उसको कैसे ज़ाया करेगा। अल्लाह नियत पे सवाब दे रहे हैं, अमल करने पे सवाब दे रहे हैं, अमल छूटने पे अफसोस हुआ उस पर भी सवाब दे रहे हैं, और अल्लाह सुबहान व तआला यानी बीमारी पर सवाब दे रहे हैं, दूसरे के लिए अच्छी चीज़ छोड़ने पर सवाब दे रहे हैं। घरों में जो बहनें जिक्र करती हैं, तिलावत और घर वालों की खिदमत, बच्चों की तरबियत, तो उनका अपना सवाब तो अलग है ही, और जो मर्द बाहर गए और जमात मस्जिद में पढ़कर आए और जो है हज उम्रे पर गए और दीन के काम किए बाहर में, उसका सवाब अलग से बहनों को मिला घर में बैठे बैठे, डबल फायदा। यानी अल्लाह ताला के यहाँ सवाब की यानी लूट है। इस तरह जिस काम में थोड़ी सी कराहत और मशक्क़त आ जाए, ज़रा सा और मुश्किल लगे, जैसे कोई रात में ठंडी रात में उठ करके वजू करना या गुसल की ज़रूरत, गुसल करना, और जो है गर्मियों में दोपहर को बहुत चिलचिलाती हुई धूप है और मस्जिद को जाना, जैसा कि होता है इंडिया वगैरह में सख्त धूप में मस्जिद को जाना, और जो है जैसे हज पर जाना, अब चला नहीं जा रहा लेकिन हज पे उसके अरकान पूरे किए, और बहुत बूढ़े वालदैन हो गए उनकी खिदमत में वक्त लग रहा है, उनकी खिदमत करना, तो जिस काम में थोड़ी मशक्क़त बढ़ जाती है उसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अल्लाह ताला जो है हमें दीन के नेक कामों में दौड़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह की बड़ाई बयान करें सुबह शाम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही मिदाद कलिमातिही रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही। मुफ्ती साहब ने अपने किताब आसान नेकियों में लिखा है कि कुछ कलिमात ऐसे हैं कि 3 मरतबा पढ़ने पर शबे कदर का सवाब मिल जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुभान अल्लाह रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुभान अल्लाह रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुभान अल्लाह रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़नी चाहिए सुबह शाम, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़न्बिन व अतूबु इलैह। और एक इस्तिग़फ़ार उम्मत के लिए कीजिए तो इतना सवाब मिलेगा जितनी कि उम्मत में मर्दों और औरतों की तादाद है, यानी 1 अरब से ज़्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हिफाजत की दुआएं खुद भी पढ़िए, बच्चों पर भी दम कीजिए। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। तरह सूरह तौबा की आयत का आखिरी टुकड़ा वो 7 मरतबा पढ़ने से पूरे दिन भर के काम अल्लाह आसान फरमा देते। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये 7 मरतबा पढ़ना चाहिए। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सूरह हशर की आखिर की 3 आयात कोई पढ़े, आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम, ये 3 मरतबा पढ़कर सूरह हशर की आयात, तो 70,000 फरिश्ते सुबह से शाम तक उसके लिए दुआ करते रहते हैं। तो कुरान पाक की आयतों में ऐसे ऐसे खवास हैं, हमें अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। नेकियों के पहाड़ मिनटों में आदमी कमा के ले जा सकता है। दुआओं की एक किताब है, उसमें दुआ के बारे में कुछ बातें पढ़ी जाती हैं। हदीस शरीफ में आया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को ये कहते हुए सुना, या ज़ल जलाल वल इकराम, ऐ आज़मत और जलाल और एहसान और इकराम के मालिक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी तेरी दुआ कबूल की जाएगी, अब तू जो चाहे मांग, या ज़ल जलाल वल इकराम। एक हदीस में आया कि अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर है, जो आदमी 3 मरतबा कहे, या अरहमर राहिमीन, ऐ सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाले, तो फरिश्ता उस शख्स से कहता है, बेशक सबसे बड़ा रहम करने वाला तेरी तरफ मुतवज्जे है, अब तू जो चाहे सवाल कर, या अरहमर राहिमीन। अब ये कलमात इतने आसान हैं, सबको मालूम ही है, दुआ के वक्त बार बार दोहराना चाहिए हमको। एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के पास से गुजरे जो कह रहा था, या अरहमर राहिमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू जो चाहे मांग, अल्लाह ताला की निगाह करम तेरी तरफ, जो चाहे मांग। एक हदीस शरीफ में आया कि जो आदमी अल्लाह से 3 मरतबा जन्नत मांगता है, तो जन्नत कहती है कि ऐ अल्लाह इस शख्स को जन्नत में दाखिल फरमा दीजिए, और जो आदमी अल्लाह से 3 मरतबा जहन्नम से पनाह मांगता है, तो जहन्नम कहती है कि ऐ अल्लाह इस शख्स को जहन्नम की आग से पनाह दे दीजिए। कुरान शरीफ पढ़ने की सूरह यासीन की फजीलत, सूरह यासीन सुबह शाम पढ़ा कीजिए, खास तौर से किसी के आखिरी वक्त हो, मैयत की जान निकल रही हो, या उसके मरने के बाद मैयत को पढ़कर सुनाए। हदीस शरीफ में आया कि सूरह यासीन कुरान करीम का दिल है, जो शख्स भी उसको अल्लाह और आखरत के लिए पढ़ा करेगा, उसकी ज़रूर मग़फ़िरत कर दी जाएगी, और उसको मरने वालों पर पढ़ा करो। तरह सूरह मुल्क की फजीलत है, तबारकल्लज़ी, सूरह मुल्क कसरत से पढ़ा कीजिए, उसको पढ़कर मरने वालों को सवाब, ईसाले सवाब पहुँचाया कीजिए। हदीस शरीफ में आया कि तबारकल्लज़ी सूरह मुल्क की 30 आयात आदमी की इतनी शिफात करती हैं कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। एक रवायत में ऐसे अल्फाज आए कि अपने पढ़ने वाले की मग़फ़िरत का उस वक्त तक सवाल करती रहती हैं फिर उसको बख्श दिया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि सूरह मुल्क हर मोमिन के दिल में हो, यानी हर मुसलमान उसको जरूर याद कर ले, पाबंदी से पढ़ा करे। याद करने के बाद उसको पढ़ने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, मस्जिद जाते हुए, उठते हुए, खाना पकाते हुए, बस सूरह मुल्क हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह मुल्क, सूरह सजदा एक रवायत में है कि हर रात में पढ़ा करते थे, और उनको पढ़ने का ऐसा सवाब है जो शब कदर में इबादत की जाती है। तो कुरान शरीफ की आयात के खवास इतने ज्यादा हैं, हम खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी सिखाएं। आज के मसरूफ जमाने में जब हम पढ़ते हैं कि लोग रात रात भर इबादत किया करते थे पहले जमाने में, तो अब वो जमाने में लोगों को मशक्कत है, अब मसरूफियत है, कमजोरी है, तो ऐसे आमाल बताए जाते हैं कि वैसा ही सवाब कुछ मिल जाए। ये किताब है नेकियों के पहाड़, मुफ्ती आसिम अब्दुल्ला साहब की किताब है, उसमें मारुफुल हदीस से उन्होंने रवायत ली है, उस्मान बिन अफ़ान रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, जो आदमी किसी रात को सूरह आले इमरान की आखिरी आयात पढ़ेगा, यानी आखिरी 10 या 11 आयात, इन नफ़ी खल्क़ समावात वल अर्द से आखिर तक, यानी सूरह के जो आखिरी 2 सफ़े हैं, बहुत मशहूर आयात हैं, वो जो है पढ़ें, आयत नंबर 190 से आयत नंबर 200 तक। तो जो शख्स किसी रात को सूरह आले इमरान की आखिरी आयात पढ़ेगा, उसके लिए पूरी रात की नमाज का सवाब लिखा जाएगा। ऐसा है कि रात भर नमाज पढ़ते रहे, तो रात को सोने से पहले इसको पढ़ने में, ये कोई 2 सफ़े हैं तो 1 मिनट 2-3 मिनट लगते हैं। फायदा, रात भर नमाज में मसरूफ रहना इस मशीनी मसरूफ दौर में किसी के बस की बात नहीं, इल्ला माशा अल्लाह, मगर ये चंद आयात पढ़ना बहुत आसान है। अब जो है वो हरूफ की तादाद देखिए, तो इन आयात में कुल 947 हरूफ हैं, 947 हरूफ हैं, उनकी नेकियों की तादाद एक हरफ 10 नेकी, 9470 नेकियां। जो आदमी, जो भाई या बहन रोजाना पढ़े, तो क्या होगा, एक महीने में 284,000 नेकियां मिलेंगी, और एक साल में 34 लाख नेकियां मिलेंगी, 3.4 मिलियन। ये सिर्फ एक अमल से ये सवाब हो गया, रात भर की इबादत का सवाब अलग रहा, और जो है ये 34 लाख नेकियां जो है ये अलग से आ रही नामा अमल में। तो कुरान शरीफ पढ़ने को मामूली ना समझें, खूब दिल लगाकर मंसूरे पढ़ते हैं लोग सुबह शाम को, माशाल्लाह जो है जितना हो सके कुरान शरीफ पढ़ा जाए। सुबहान अल्लाह 100 मरतबा सुबह पढ़ लीजिए, सुबहान अल्लाह 100 मरतबा शाम को पढ़ लीजिए, इतना सवाब है गोया 100 नफली हज किए, सवाब की लूट है, उसमें वक्त क्या लगता है। चलते फिरते, आते जाते, खाना पकाते, मस्जिद जाते, काम काज करते, जिक्र करना चाहिए, जिक्र, तस्बीह, तिलावत, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, यूँ समझे कि हमारा असली काम है, इसी के लिए दुनिया में भेजा गया था। ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोना चांदी हीरे जवाहरात, आखरत के जन्नत की महल बना लो, बच्चों को भी लगाए, खुद भी लगाए, तो जो है उसमें घर में नूर आएगा, शैतान घर से चले जाएंगे, वसवसे दूर हो जाएंगे, और आदमी के दिल मुनव्वर हो जाएगा, उसमें दिल में जो है सारा डिप्रेशन, परेशानी सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान होता है, और किसी चीज़ से इत्मीनान नहीं होता। दुआ का एक सबक है, हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब दामत बरकातुहु की किताब कुरान और हदीस के अनमोल खजाने, ट्रेजर्स फ्रॉम कुरान एंड हदीस, और बहुत आसान दुआ है। दीन और जान और औलाद और घर वाले और माल की हिफाजत की दुआ, सब चीज़ें आ गई, दीन, अपनी जान, माल, औलाद, घर वाले, सब की हिफाजत हो जाए। कंजुल उम्माल की हदीस है, बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली, तर्जुमा, अल्लाह के नाम की बरकत हो मेरे दीन पर, मेरी जान पर, मेरी औलाद पर, मेरे अहलो आयाल पर, मेरे माल पर। बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली, बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली, बहुत आसान दुआएं। जिस तरह बच्चों को दुआएं याद कराई जाती हैं स्कूल में, या मस्जिद में, इस तरह बड़ों को भी, हमें भी चाहिए कि हम दोबारा बैठ के ये सब दुआएं सीखें और अपने मामूल में लाएं। असल ये है, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पर जब दीन उतरा तो सब बच्चे नहीं थे कि भाई बच्चे जाते हैं और बच्चे कुरान पढ़ते हैं और बच्चे दुआएं सीखते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है, आजकल का मिजाज है। सहाबा बड़ी बड़ी उम्र के थे, 30-40 साल के, 50 साल के, जब उनको पता चला कुरान शरीफ के इतने फ़ायदे हैं और इसके इतने फ़ायदे हैं, तो वो मस्जिद में बैठ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते थे जैसे बच्चे सीखते हैं। तो वैसा ही माहौल जो है दोबारा बनाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल, दरूद शरीफ जो हम पढ़ते हैं, ये अगर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में एक दुआ है, और शेख फरमाते हैं आम तौर से दूसरे के लिए दुआ करने का मकसद दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना होता है, लेकिन यहाँ सूरत हाल ऐसी नहीं। हमारी दुआओं की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ज़रूरत, बादशाहों को, फ़कीरों और मिस्कीनों के तोहफे की क्या ज़रूरत, उम्मती की क्या ताकत, हमारी क्या ताकत कि सैयदुल अंबिया की बारगाह में उनके रुतबे के लायक तोहफा पेश कर सके। असल में अल्लाह जल्ले शानहु के दरबार में उनके बताए हुए तरीक़े से दरूद व सलाम पढ़ने से नफ़ा फ़ायदा हमारी अपनी ज़ात को होता है, और अल्लाह की रिज़ा, सवाब आखरत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी क़ुर्ब, उनकी ख़ास नज़र इनायत होती है, और दरूद व सलाम पढ़ने का असल मकसद यही होता है। और ये ख़ास करम होता है कि फ़रिश्तों के ज़रिए हमारा दरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया जाता है, जो जिसने भी ज़रूर पढ़ा उनका और उनके वालिद का नाम लेके फरिश्ता जाकर पेश करता है, ये आपकी उम्मत ने किसी ने दरूद पढ़ा, तो अल्लाह कितनी रहमत है। और फिर उसके बाद फ़ज़ाइल की 10 मरतबा रहमतें नाजिल होंगी, और जो है बहुत सारे दरूद शरीफ के खवास हैं, हर जो है यानी दीन दुनिया की भलाई होगी। इसलिए फरमाते हैं ये अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करने का एक बहुत आसान रास्ता है, चलते फिरते दरूद शरीफ पढ़ता रहा। एक दरूद पढ़ा जाएगा आज, उसका फ़ायदा यह है कि उस दरूद शरीफ के पढ़ने वाले को आसमान और ज़मीन भर कर और आरश अज़ीम के बराबर सवाब मिलता है। आसमान भी भर गया, ज़मीन भी भर गई, आरश अज़ीम भी भर गया, इतना जो सवाब हुआ वो इस दरूद को पढ़ने पे मिलेगा। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन मिल अस्समावाती व मिल अल अर्दी व मिल अल अर्शिल अज़ीम। या अल्लाह रहमत नाजिल फरमाइए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इतनी रहमत जिससे आसमान भर जाए और ज़मीन भर जाए और अर्श अज़ीम भर जाए। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन मिल अस्समावाती व मिल अल अर्दी व मिल अल अर्शिल अज़ीम। चलते फिरते जो है दरूद शरीफ की कसरत, जुमे के दिन ख़ास जो है दरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और जिस वक्त जो तौफीक हो जाए अल्लाह ताला हमें दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नमाज के अहमियत के बारे में एक सबक है शेख अब्दुस्सत्तार साहब के मजलिस में से, अल्लाह ताला हजरत के दर्जात बुलंद फरमाए। इसमें सही मुस्लिम की रिवायत नकल फरमाई है कि किस तरह से जो है बंदे और अल्लाह के दरमियान यानी बातचीत हो रही है नमाज के दौरान, क्या हो रहा है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह के दरबार से जवाब आता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की, उसी वक्त जवाब आता है। बंदा कहता है अर्रहमानिर्रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। फिर बंदा कहता है इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरे और मेरे बंदे के लिए के दरमियान है, मेरे बंदे के लिए वही है जो उसने तलब किया है, जो वो मांग रहा है। जैसे जैसे बंदा या बंदी नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते रहते हैं, अल्लाह सुबहान व तआला के दरबार से जवाब आता रहता है, जवाब आता रहता है। कितनी यानी बड़ी फजीलत की चीज़ है। शेख फरमाते हैं कि महबूब से बातें करने में कौन थकता है, तो जिन लोगों को भी रात भर नमाज पढ़ रहे हैं उनको उसमें लुत्फ आ रहा है। असल बात यह अल्लाह सुबहान व तआला को इतना बड़ा महबूब, उनको अल्लाह से इतनी मोहब्बत हो गई। आदमी का किसी से ताल्लुक़ मोहब्बत या अजमत की वजह से होता है, जिसके साथ ताल्लुक़ होता है उसके साथ बैठकर बात करने में मज़ा आता है, और जिसकी अजमत होती है आदमी उसके साथ बैठने को अपने लिए सआदत और फ़ख्र समझता है। बंदे के साथ, बंदे के अल्लाह के यहाँ दोनों ताल्लुक़ है, मोहब्बत भी है और अजमत भी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल बकरा में, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, जो मोमिन है उनको सिर्फ अल्लाह ताला के साथ ही बहुत शदीद मोहब्बत है। तो जो है हमें नमाज के लिए बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला बादशाह हैं, शहनिशाह हैं, उनके लिए पूरे कुरान में एक दफ़ा कहना काफ़ी था कि नमाज पढ़ो, हमें पढ़ना पड़ता, लेकिन वो इतने शफीक मेहरबान हैं कि बार बार याद दिलाए, नहीं इतने फ़ायदे की चीज़ है कि 700 मरतबा याद दिलाए कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। कोई ख़ास वजह है कि वो इतनी ऊँची चीज़ है कि उसको बार बार याद दिला रहे हैं। और ये ऐसी अहम चीज़ है कि इस्लाम में अब कोई बीमार हो गया, कमज़ोर है, मुसाफिर है, परेशान है, उसके लिए थोड़ी सी रियायत रखी गई, लेकिन नमाज छोड़ नहीं सकते। शरीयत में ऐसा है कि अगर कोई आदमी बहुत बीमार है, वजू नहीं कर सकते, तो तयम्मुम कर ले। पानी इस्तेमाल करने में अगर तबीयत ख़राब हो सकती है तो मसह कर ले, यानी तयम्मुम कर ले। अगर सफ़र के अंदर वक्त बहुत कम है तो 2 रिकत ही पढ़ लो, नमाज आधी कर दी, फ़र्ज़ नमाज। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बीमार है तो बैठकर पढ़ लो, बैठकर नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ लीजिए। सारी यानी तरामीम कर दी जहाँ जहाँ गुंजाइश थी, लेकिन फरमाया कि मुसलमान और नमाज दोनों लाजिम है, किसी हाल में छोड़ नहीं सकते। अतः किसी की कोई नमाज गलती से छूट गई, अदा हो गई, तो फरमाया कि जिंदगी में छूट जाने वाली नमाजों को अदा करना शुरू कर दे, और अपनी वसीयत में लिख दीजिए, वसीयत नामे एक कॉपी में लिख दीजिए, मेरी ज़िंदगी की इतनी नमाज़ें बाकी हैं, मैंने इस साल से अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी हैं, अगर हम दुनिया से चले गए तो हमारे जाने के बाद विरासत में सबसे पहले मेरी नमाज़ों का फ़िदिया अदा किया जाए। इतनी सी चीज़ लिखने में क्या है। और जब महीने महीने में जो नमाज़ें होती जाएँ तो उसकी तादाद कम करते, कॉपी में लिखते गए इतनी बाकी हैं, इतनी बाकी हैं। जिस दिन दुनिया से गए, अब रिश्तेदारों ने देखा और फिदिया दे दिया, बस नियत थी कि पूरी पढ़ेंगे, मामला पूरा हो गया। बहुत आसान तरीका है। एक अल्लाह वाले कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्हें शैतान मिल गया, तो उन्होंने शैतान से पूछा, बताओ मैं तेरा कैसे बन सकता हूँ। अल्लाह वाले शैतान से बाज़ा कोई चीज़ उगलवा लेते हैं, उसकी ट्रिक, बताओ मैं तेरा कैसे बन सकता हूँ। शैतान ने कहा कि नमाज में सुस्ती कर लो और झूठी कसम खा लो तो तू मेरा बन जाएगा। नमाज में सुस्ती कर लो और झूठी कसम खा लो तो तू मेरा बन जाएगा। उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कसम खाई कि आज के बाद इन दोनों चीज़ों को नहीं करूँगा। ये सुनकर शैतान ने भी कसम खाई कि मैं कभी भी इब्ने आदम को सच नहीं बताऊँगा। तो नमाज का जो तमाम जो है शैतान को शिकस्त देने का आसान तरीका। अब नमाज में खुशु चाहिए, जैसी नमाज शायान शान अल्लाह के दरबार में। हजरत शेख फरमाते हैं कि नमाज से पहले जो चीज़ें हैं उनमें भी खूब एहतमाम किया जाए, तहारत है, इस्तिंजा है, वजू है, उसमें एहतमाम। वजू में दुनियावी बातें, ख्यालात के बजाय सुन्नत दुआएं, यानी एक एक हाथ धोने की अलग दुआ, मुंह धोने की अलग दुआ, पैर धोने की अलग दुआ, दुआओं की किताब देखिए तो एक एक मिनट की इतनी दुआएं हैं कि आदमी बस उनको पढ़ता रहे तो कोई और ख्याल आएगा ही नहीं उसको। फिर जो है नमाज से जब अजान हो जाए तो अब नमाज के बाद दूसरा कोई काम नहीं। नमाज अजान हो गई, बच्चों को भी तैयार किया, घर में भी तैयार हुए, पर जो लोगों को मर्दों को भेजा, नमाज का वक्त हो गया, पूरे घर में हलचल मच गई। जब नमाज से पहले आदमी हाथ उठाता है और तकबीर कहता है तो उसका ऐसा उसको ख्याल हो कि मैंने गोया दुनिया को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, दुनिया से दस्तबरदार हो गया, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो गया, इसलिए हाथ उठाया, दुनिया से हाथ उठा लिए। और होता यह है कि आदमी में दिमाग में ख्याल रुकता नहीं है, ख्याल एक घोड़ा है, कभी चांद पर, कभी मरीख पर सैर करता रहता है, कभी उधर, कभी किसी दूसरे मुल्क में, तो इस वजह से ख्यालात आते हैं। उसका तरीका यह है कि ख्याल के घोड़े को भी किसी अच्छी चीज़ में मशगूल कर दिया जाए। मसलन हजरात फरमाते हैं, ये सोच लिया जाए कि मैं हरम शरीफ में हूँ, ये सोच लिया जाए कि काबा शरीफ मेरे सामने है और हजर असवद मेरे सामने है, गोया मुल्तज़म काबा शरीफ का दरवाज़ा मेरे सामने है, बहुत दफा लोगों ने देखा है उसको जाकर, और कोई शक्ल में भी देखा होगा तस्वीर में, तो उसका ख्याल ला लिया जाए कि ये मेरे सामने है और अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। जो आयत पढ़ी जाए उसके मानी मफहूम थोड़ा गौर कर लिया जाए, तो अब जो है सारी तवज्जो नमाज की तरफ हो जाएगी। हम बादशाह के दरबार में खड़े हैं, बादशाह मुझे कुछ अता फरमा रहे हैं, उनके दरबार से जवाब आ रहा है, जब ये चीज़ें सोचेंगे तो अब नमाज में खुशू आने लगे। तो नमाज में खुशू की मेहनत की जाए। मस्जिद में जाकर हमारे भाई नमाज पढ़ते हैं तो मस्जिद के आदाब का ख्याल रखें। मस्जिद में ज़ोर ज़ोर से बातें नहीं करना, मस्जिद को कम्युनिटी सेंटर और क्लब नहीं बनाना। वो मस्जिद से जो है बहुत दूर से ही आवाज़ें आने लगी, मियाँ फलाने कहाँ वो दिन से चुमच में छोड़ तुम्हें जो है ढूंढ रहे थे, किधर चले गए, बाजार जाना है वगैरह वगैरह। बच्चे को लेके आते मस्जिद में, नमाज हो रही है, बेटा ये नमाज दुआ पढ़ो, पूरी रुकू में है जमात और बच्चे को दुआ सिखा रहे हैं खड़े होके। भाई दुआ उस वक्त सिखाइए जब मस्जिद खाली पड़ी हो, उस वक्त ले जाएं बच्चे को बार बार अंदर बाहर अंदर बाहर, बच्चे दुआ पढ़ो। जिस वक्त इज्तमाही अमल हो रहा है उस वक्त कुछ और काम नहीं करने का, बिल्कुल खामोशी से, गोया आदमी का चेहरा पीला पड़ गया हो, अल्लाह का दरबार है, फरिश्तों की आमद है। जब मस्जिद में ज़ोर से शोर होता है तो फरिश्ते जो है पहले कहते हैं अल्लाह के वली चुप हो जाइए, पहले दुआ से कहते हैं चुप हो जाओ, फिर उसको अगर ज़ोर से कहते हैं फरिश्ते, और अगर फिर भी नहीं मानता आखिर में कहते हैं अल्लाह के दुश्मन चुप हो जा। जब फरिश्ते जब इतने नाराज़ हो रहे हैं तो फिर क्या होगा। मस्जिद में जो है यानी मोबाइल नहीं बजाना, मौसीकी वैसे तो कहीं पे भी नहीं बजाना चाहिए, मस्जिद में तो बहुत ही मना है। नमाजी के आगे से नहीं गुजरना, तंग जगह में नहीं घुसना दो लोगों के बीच में, बच्चों को भागने दौड़ने नहीं देना, दुनिया की बातें नहीं करना, अपनी ऐसी जगह नमाज नहीं पढ़ना कि लोगों को तकलीफ हो। यानी मस्जिद के बहुत सारे आदाब हैं और उसको आहिस्ते आहिस्ते हम अपनी ज़िंदगी में भी लाएं और बच्चों को भी सिखाएं। और इन सब चीज़ों का ताल्लुक जो है वो एक खसूसियत से है, यानी अगर एक आदमी में एक सिफत आ जाए, एक खसूसियत, तो मस्जिद क्या, घर क्या और बहुत सारे और काम जो है उसमें इतनी सारी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही कर लेगा। और उस सिफत का नाम है हया, सिफत का नाम है हया, हया शर्म, शर्मिंदगी। कि आदमी ऐसा नहीं समझे बस मैं और मेरी मस्जिद, मैं और मेरा हजरे अस्वद, सब हटो जाओ यहाँ से, बस दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ पहुँच गया। हर जगह का अदब, लोगों का अदब, मस्जिद का अदब, जिस आदमी में जितनी हया होगी उतनी ही यानी शर्मीला किस्म का हो, खवातीन में माशाल्लाह होती है शर्मो हया, यहाँ बात हो रही है कि मर्दों में भी शर्मो हया खूब हो तो फिर ये सारे आदाब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे दबे पांव आराम से आएगा मस्जिद में कि ना कोई आवाज़ होगी लकड़ी के फर्श पे, ना दरवाज़ा खोलने की आवाज़ होगी, ना दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ होगी, जो है चुप चुपते चुपते आए और चुपके चुपके चले गए। बड़े बड़े मशाइख का ऐसा ही मामूल है, कहीं से आए नमाज पढ़ी, देखा हो मुफ्ती आज़म शेखुल इस्लाम आपके बराबर में नमाज पढ़े चले गए, ना आटो बच्चों का शोर है, ना आवाज़ें हैं, ना कोई उनके कोई बॉडी गार्ड है। अच्छी नमाज इज्तमाही हुई, किसी को पता भी नहीं चला कि आप मस्जिद में आए थे, चले गए थे, आकर अपना काम करके चले गए। अल्लाह ताला हमें जो है अच्छी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों के इकराम के बारे में कुछ बातें पढ़ी जाती हैं, उसमें यह है कि एक दूसरे का एहतराम, जैसे घरों में, रिश्तेदारों में, पास पड़ोस में, और कोई ऊंच नीच हो जाए तो फौरन माफ़ी तलाफी कर लेना दूसरे का, तो उसके कुछ वाकयात पढ़े जाते हैं ताकि हमें शौक पैदा हो। सबको मालूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही अजवाज मुतहरात थी, बारी बारी सबके यहाँ घर पर रहते थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मुझे उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा ज़ौजाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात के करीब बुलाया और कहा कि हमारे आपस में बहुत सी बातें वो हुई जो सौकनों में होती हैं, सौकनों में होती हैं, अल्लाह ताला मेरी और तुम्हारी इन मामलात में मग़फ़रत फरमाए जो भी हुए। मैंने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए उन सब बातों की मग़फ़रत करे और इन सब बातों से बरी ज़िम्मा करे। ये सुनकर उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा ने कहा तुमने मुझको खुश कर दिया, अल्लाह तुम्हें खुश कर दे, अल्लाह तुम्हें खुश कर दे। इसी तरह उन्होंने उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा को बुलाया, उनसे भी ऐसी ही बात कही। इसमें सबक है पास पड़ोस रिश्तेदार घर में मुख्तलिफ लोग आपस में वक्फे वक्फे से एक दूसरे से माफ़ी तलाफी करते रहे, जैसे सफ़र पर गए या हफ्ते हफ्ते कोई, अरे भाई हमारा कहा सुना माफ़ करना, कोई बात बुरी लगी हो माफ़ करना। जो कहते हैं जहाँ बहुत से बर्तन हो टकराते हैं, अलग अलग मिजाज के लोग हैं, किसी ने हो सकता है मेरी बात तो आपको बुरी लग गई हो, जरा माफ़ करना, इस तरफ कहा सुना माफ़ करना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह बहुत बड़े इमाम मदीना मुनव्वरा के, उनके साथ बाज हासिदों ने, बाज लोगों ने उनकी सख्त मारपीट की। बादशाह को पता चला तो बादशाह ने कहा कि इनको पकड़ो और सजा दो। इमाम साहब सवारी पर सवार हुए, पूरे शहर में गए और ऐलान किया कि मैंने अपने मारने वाले सब को माफ किया, बराए मेहरबानी कोई उनको सजा मत दीजिए। पूरे शहर में खुद ऐलान किए। तो अल्लाह वालों का ऐसा तर्ज अमल होता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, मशहूर वाकया है कि बादशाह नाराज होके उनको कोड़े लगवाता, अरे लोगों के सामने खड़ा होके इतना बड़े इमाम और उनको कोड़े लगवाए। इमाम साहब रोज माफ कर देते, रोज माफ कर देते। पूछा गया क्यों माफ कर देते हैं, फरमाया मेरी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी उम्मती को क़यामत में आजाब हो उसमें मेरा क्या फायदा। शायद का तो होता है कि हर उम्मती को फायदा हो, आखरत में दुनिया आखरत के दर्जात हासिल करे, अगर मैं अपनी जाती चीजों में उलझ जाऊंगा उसका नुकसान हो जाए। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनको एक सिपाही ने जूते मारे। सिपाही ने, वो पहले तो खुद बादशाह गवर्नर हाकिम थे और उसके बाद जो है उन्होंने अल्लाह के वास्ते सल्तनत छोड़ दी और जो है वो फकीरी में रहने लगे। उनको एक सिपाही ने जूते मारे, बाद में पता चला कि ये तो बड़े बुजुर्ग हैं। उसने माफी चाही, हजरत ने फरमाया कि जब मारते थे तो दूसरा जूता मारने से पहले पहला जूता माफ कर देता था। यानी कि सारे मार लो इकट्ठे घर जाके सोचेंगे तो शायद माफ कर देंगे किसी वक्त, हर जूते को अलग अलग माफ कर देते थे। तो इस तरह के वाकयात से जो है अल्लाह वालों की जो है जिंदगी भरी हुई है और इसी से जो है दिल जुड़ते हैं और इसी से जो है, यानी बात नहीं, ये नहीं हो रही कि अजी हक पे कौन है, हम ठीक कहते हैं वो गलत कहता है, ये बात नहीं हो रही, हलाल हराम की बात नहीं हो रही। भाई आप ही ठीक हैं लेकिन आप अल्लाह के वास्ते दूसरे को माफ कर, ये बात हो रही। अगर शेख अब्दुल सत्तार साहब का मजमून है हुस्ने अखलाक पर, उसमें हजरत ने फरमाया कि इंसान की इंसानियत और उसका निखार उसके अखलाक से होता है। जिस दरख्त के फल अच्छे हों, खूबसूरत हों, तो लोग उसके करीब भी जाते हैं, उसकी हिफाजत भी करते हैं। जिस आदमी के अखलाक अच्छे हों तो लोग उसके करीब आते हैं, उठना बैठना अपनी सआदत समझते हैं। इस तरह अच्छे आदमी के बारे में हर शख्स चाहता है कि मुझे उनकी दोस्ती मिल जाए, ये मेरे पड़ोसी बन जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ फरमा रहे थे, काबा शरीफ का। दौरान तवाफ आपने फरमाया कि ऐ बैतुल्लाह, अल्लाह ने तुझे बहुत इज्जत दी है, बहुत एहतराम बख्शा है। यानी एक तवाफ है, उसमें जो है एक एक कदम पर जो है 70-70 हज़ार नेकियाँ मिल रही हैं और एक एक नेकी के 1-1 लाख मिल रहे हैं काबा शरीफ में। फरमाया कि बैतुल्लाह, अल्लाह ने तुझे बहुत इज्जत दी है, लेकिन एक चीज़ अल्लाह ने ऐसी भी पैदा की है जिसकी इज्जत और एहतराम अल्लाह ने तुझसे भी ज़्यादा रखी। साहबी साथ थे अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हा, फरमाते हैं मैं बहुत हैरान हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं। अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, वो कौन सी चीज़ है जिसकी इज्जत अल्लाह के नज़दीक बैतुल्लाह से भी ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे मोमिन की जान, उसकी इज्जत, उसका माल, कि उसकी इज्जत और हुरमत अल्लाह के नज़दीक बैतुल्लाह की इज्जत और हुरमत से भी ज़्यादा है। फरमाते हैं आज का मुसलमान अजीब है कि बैतुल्लाह के गिर्द रोते हुए चक्कर लगा रहा है, गिलाफ काबा पकड़कर रो रो के दुआएं कर रहा है, लेकिन मुसलमानों के दिलों को दुखा रहा है। फरमाते हैं कि अखलाक का ताल्लुक असल दिल से है, कि दिल गलत जज्बात से, किब्र से, बड़ाई से, हसद से, कीने से, बोझ से पाक हो जाए। और अलामत यह है कि उसकी ज़ात किसी को तकलीफ ना पहुंचे बल्कि दूसरों की खैरख्वाही हो और दूसरों को भलाई पहुंच रही हो। और ये चीज़ हासिल होती है जब आदमी किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक जोड़ ले और उनको अपने दिल की खराबियां लिखे, यानी सिर्फ वज़ायफ नहीं बल्कि दिल में जो बीमारियां हैं उनके बारे में लिखे और मशवरा करे और जो वो बताएं उस पर अमल करे, तो फिर जाकर ये चीज़ें ठीक होती। ये जो है यही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से सहाबा ताबईन, ये एक निज़ाम है बंदों की तरबियत का, अच्छे अखलाक के लिए अल्लाह वालों से उसकी तरकीब पूछी जाए। अल्लाह ताला हमें अच्छे अखलाक अता फरमाए, आमीन। ज़बान की हिफाजत के बारे में एक चंद बातें, एक दो बातें अर्ज़ की जाती हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह सुबहानहू व तआला ने نافرمانوں کے قول بتائے کئی جگہ کہ کس طرح انہوں نے یہ بات زبان سے نکالی تو اللہ ناراض ہوئے. لعنوا بما قالوا, جو ہے یعنی ایسے لوگ گزرے انہوں نے زبان سے ایسی بات کہہ دی کہ اللہ کی ان پہ لعنت ہو. اس کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام اور لقمان علیہ السلام, لقمان حکیم کی باتیں اچھی باتیں ان کا اللہ نے ذکر فرمایا, نصیحتیں دیکھو یہ ہے. تو زبان کا جو ہے یعنی کتنا, ایک ہی زبان ہے, اس کا استعمال غلط بھی ہو سکتا ہے اور زبان کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے. زبان کی ایک پھسل جانے سے خاندان اجڑ جاتے ہیں اور ملکوں میں لڑائی شروع ہو جاتی, اور زبان کی ایک اچھی بات صلح کی تو اس سے خاندان بھی مل جاتے ہیں اور انسانیت تباہی سے بچ جاتی ہے. ایک بزرگ روزانہ جو بھی بات کہتے اس کو لکھ لیتے, جو بات کہتے لکھ لیتے, شام کو جا کر دیکھتے کہ کتنی بات ضروری تھی اور کتنی بات غیر ضروری تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. 100 برس کا غیر مسلمان ایک کلمہ پڑھ لے صدق دل سے تو زبان کی ہلکی سی حرکت سے 100 برس کے گناہ معاف ہو گئے, اللہ کی رحمت میں آ گیا. اور کوئی مسلمان 70 برس کا اگر کلمہ کفر کہہ دے اللہ بچائے تو کیا ہوا کہ ایمان سے نکل گیا اور ساری جو نیکیاں پوری عمر کرتے ہوئے آ رہا تھا سب ضائع ہو گئی زبان کی ایک ہلکی سی جھلک سے. تو زبان کا بہت جو ہے زبان کا استعمال بہت احتیاط سے کیا جائے. دیکھیے اللہ کے پاس پہنچنے کا راستہ اصل میں عاجزی ہے, بے بسی ہے, شکستگی ہے. اگر اللہ کے پاس پہنچنے کا راستہ ہوتا قابلیت, کوالیفیکیشن, پیسے, مال, جائیداد, تو بہت سارے لوگ محروم ہو جاتے. تو اصل جو راستہ ہے وہ ہے عاجزی, بے بسی, شکستگی, رونا, گڑ گڑانا. یہ تو سب کو مل سکتا ہے, فقیر کو بھی مل سکتا ہے, اتنی آسانی رکھی گئی. جس نے خود کو مٹایا تو اللہ مل گیا. اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل میں رہتے ہیں, اس لیے فرمایا گیا کہ ایک قدم نفس پر رکھو, دوسرا قدم اللہ کے دربار میں پہنچ. تو جو بھی عطا اور نعمت ہے بس ان کا کرم ہے, ہمارا کوئی حق نہیں ہے. اللہ کے فضل سے فضل ہے, اللہ کے کرم سے کرم ہے. جس وقت ہم اپنی نظر میں اپنے آپ کو اچھا سمجھیں, سمجھ لیجئے کہ اسی وقت اللہ کے دربار میں ان کی نظر سے گر جائیں. تو ہم جو ہے کسی پر اعتراض نہ کریں, اعتراض چھوڑ دیں. کسی بندے, حالات, واقعات پر اعتراض زبان سے, دل سے, ہر قسم کا اعتراض چھوڑ دیں. بس اللہ 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 تعالیٰ ہر معاملے کو اللہ کی طرف حوالے کریں. ایک بہت اہم مضمون پڑھا جائے گا, سب کے فائدے کا ہے, حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے, آسان نیکیاں. عام طور سے تو ذکر, تلاوت اور ان کے ذریعے نیکیاں ملتی ہیں, یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ صبر کرنے کے ذریعے نیکی کیسے ملتی. اس میں کچھ کرنا نہیں ہوتا, بس برداشت کر رہے ہیں, صبر, خاموشی سے بیٹھے, اس میں نیکیاں مل رہی. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں 3 قسم کے عالم, 3 قسم کی جگہیں پیدا کی. ایک وہ جگہ جس میں خوشی ہی خوشی, آرام ہی آرام ہے, یہ جنت ہے. ایک وہ جگہ جس میں تکلیف ہی تکلیف اور غم ہی غم ہے, یہ جہنم ہے. اور ایک جگہ جہاں کبھی خوشی ہے, کبھی غم ہے, کبھی راحت ہے, کبھی تکلیف ہے, یہ دنیا کی بات ہے. لہٰذا اس دنیا میں آج تک, دیکھیے یہ وقت کا اتنا بڑا مفتی اور شیخ الاسلام اور حضرت جو ہے ان کے 70 سالہ زندگی کا نچوڑ فرما رہے ہیں, اس کو آپ اگر ہم سب اپنے دل پہ باندھ لیں تو سارا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں آج تک نہ کوئی ایسا انسان ہوا ہے, نہ ہو سکتا ہے, جسے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو. انسان جتنا ہی دولت مند ہو, جتنا ہی بااختیار ہو, یعنی بادشاہ بھی ہو جائے, اور کتنا ہی نیک اور متقی ہو, اسے دنیا میں خوشی کے ساتھ غم اور آرام کے ساتھ تکلیف سے ضرور پیش آئے گا. بڑے بڑے پیغمبر بھی تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزرے ہیں. لہذا کوئی شخص چاہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی تکلیف یا صدمہ نہ پہنچے تو وہ دنیا کی حقیقت سے ہی جاہل ہے, اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی. کم اور زیادہ کا فرق ضرور ہو سکتا ہے, لیکن تکلیف سے بالکل نجات دنیا میں ممکن نہیں ہے. اب جب یہ ہے کہ تکلیف آئے گی, مانگنا نہیں ہے, دعا کرنا ہے اللہ تکلیف نہ آئے, आ गई तो अब यह है कि छोटी से छोटी तकलीफ पर भी इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। मसलन चलते चलते पाँव में कांटा लग गया, दामन किसी चीज से उलझ गया, पाँव फिसल गया, अल्लाह बचाए, घर में बिजली चली गई, किसी नागवार चीज की खबर कान में पड़ गई, कोई चीज गुम हो गई, ऐसा होता रहता है सुबह शाम। हर मौके पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए और ये बात समझना चाहिए कि हर नागवार बात के पीछे अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत है। इस चीज का नाम सब्र है और इसका बेहिसाब मुसलसल सवाब मिलता रहता है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सोच और इस पर बर्दाश्त करने से अब जो है मिलियन बिलियन मिल रहे। जिस तरह सदमे के वक्त बेख्तियार रो देना सब्र के खिलाफ नहीं, इस तरह तकलीफ के मौके पे तकलीफ दूर करने की कोशिश करना भी सब्र के खिलाफ नहीं। बीमारी आई तो इलाज कीजिए, बेरोजगारी हुई तो रोजगार तलाश कीजिए, ये सब कोशिशें भी करना चाहिए, तकलीफ दूर होने की दुआ भी करना चाहिए। तकलीफ की शिद्दत में कराहना, आह आह करना, ये भी सब्र के खिलाफ नहीं, ये सब चीजें कर सकते हैं। सब्र की हकीकत सिर्फ वो है कि आदमी अल्लाह के फैसले पर एतराज और शिकायत ना करे दिल में, अल्लाह मेरा मेरे साथ ऐसा क्यों। सबर की हकीकत यह है कि अल्लाह के फैसले पे कोई एतराज और शिकायत ना हो और जबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता रहे। इतना आसान अमल है, इसका इसका अजर और सवाब इतना ज्यादा है कि वो काउंट में नहीं है, किसी गिनती में नहीं है। अल्लाह ताला सबर की हकीकत अता फरमाए। मुफ्ती रशीद अहमद साहब की किताब है तर्क मुनकरात, उसमें इसी से मिलता हुआ मजमून है जो पढ़ा जाएगा, ये भी बहुत फायदे का मजमून है, इसको बहुत गौर से सुनिए, ये चीजें सबको पेश आती। जिस दिल में आखरत की फिक्र हो, अल्लाह से मोहब्बत हो, अल्लाह ताला उस दिल की आंखें खोल देते हैं और उसको समझ में आ जाता है कि ये सारे हालात आरजी हैं, खत्म होने वाले हैं। यहाँ अगर लज्जतें और नेमतें हैं वो भी फानी हैं, अगर कोई तकलीफ है, इफलास है, कोई ज़हनी परेशानी है, तो ये भी एक गुजरगाह है, गुजर जाने वाली है, एक घड़ी की बात है, गुजर जाएगी, किस्सा खत्म हो जाएगा। गुजर गई गुजरान, क्या झोंपड़ी क्या मैदान। सबको फायदा हो जाएगा, जो लोग फोन पर सुन रहे हैं और जो यहाँ बैठे हैं, हल्की आवाज में सब एक दफा खुद दोहरा लें, गुजर गई गुजरान, क्या झोंपड़ी क्या मैदान। तो ये जो है हकीकत उनके दिल की गहराई में उतर जाती है तो बड़े बड़े हादसे से भी परेशान नहीं होते। हजरत मिसाल देते हैं, आपने देखा होगा कि बसों पर जो लोग सवार होते हैं पहले घंटा घंटा भर बस स्टॉप पर खड़े रहते हैं, जब बस आई तो डंडा पकड़कर लटकते हैं और लटकते ऐसे हैं कि पाँव का जरा सा अंगूठा पायदान पर है, लटकते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे लटकने की हिम्मत कैसे हो गई, कौन आम सीन है ये जो है बड़े शहरों में कि ऐसे लटकने की हिम्मत कैसे हो गई, इसलिए कि वो समझते हैं कि 2-4 मिनट की बात है, लटक कर गुजार लो। खड़े होके गुजार लो या बैठ कर गुजार लो, 2-4 मिनट की बात है। अगर ये ख्याल आ गया कि जो एक बार लटक गया लटकता ही रहेगा, तो कोई भी लटक कर सफर करने को तैयार नहीं। किसी को बताना है कि घर से अभी जो है सदर तक तुम्हें जाना है, 1 घंटा लटके रहोगे फिर नहीं लटके रहोगे, क्योंकि 2 मिनट की बात है, अभी खाली हो जाती है, अभी अंदर चला जाऊंगा, कोई मसला नहीं। जहां कहीं सीट पर बैठने में 2 आदमियों का झगड़ा हो, झगड़े भी होते, तो लोग कहते हैं मियाँ सफर है, गुजारा कर लो, गुजर जाएगा। उसकी एक मिसाल ये है, यहाँ पर यानी बड़े बड़े यानी लाखों करोड़पति जुमे की नमाज पढ़ने आते हैं, मस्जिद भर गई, अब बारिश हो रही है, वो है, बाहर एक छोटा सा मैदान घास फूस का बिछा हुआ है, तो क्या होता है, कहते मियाँ 5 मिनट की बात है, उस पर बैठ जाते जूते उतार के सड़क पर और नमाज पढ़ के जाते, हर हफ्ते का सीन है जो भी शायद देखी। एक दफा हमें भी इतफाक हुआ, दूर से कहीं से आ रहे थे, हमने देखा कि 50 आदमियों का मजमा ऐसे बैठा है सड़क के बगल जो आम दिनों में कभी कोई नहीं बैठेगा, तो यहाँ 5 मिनट की बात है बैठ जाते। शेख फरमाते हैं कि मैंने एक दानिश्वर से दुनिया की हकीकत दरियाफ्त की, उसने कहा कि या तो ख्वाब है या ख्याल है या अफसाना है, ख्वाब है, ख्याल है या अफसाना है। फिर हमने दुनिया की मोहब्बत रखने वाले का हाल पूछा तो फरमाया कि या तो देव है या चुड़ैल है या दीवाना है। इसकी मिसाल एक दो किस्से बताए जाते हैं कि बहुत अहम मजमून है। इसमें किसी चीज की नफी नहीं की जा रही, जिसको अल्लाह ने दिए हैं लाखों करोड़ों, खुद भी खाए दूसरों से भी खर्च करे। अब जिसके पास नहीं है वो कोशिश भी करे, दुआ भी करे, लेकिन जिद एतराज नहीं करे और हर वक्त उसी की फिक्र में ना रहे। मुसाफिर एक शहर में आया, जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पहाड़ों जंगलों में से गुजरे, रेगिस्तान। रात का वक्त हो गया, मुसाफिर अपने एक शहर में आया, होटल तलाश किए भाई रात रहने को, सारे होटल बुक, कोई जगह नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, रात का वक्त आ गया। एक होटल वाले ने बेचारे को देख के कहा कि मियाँ कमरे तो सारे बुक हैं, चलो आपके लिए क्या याद करोगे, एक चारपाई छत पे एक्स्ट्रा डलवा देता हूँ। लेकिन चारपाई जरा टूटी हुई है। मुसाफिर क्या कहता है, कहता अरे साहब एक ही रात की तो बात है, बहुत अच्छी चीज है, फौरन डलवाइए, बस दे दीजिए। तो एक आदमी जो है, एक और किस्से से बात समझ में आएगी कि एक आदमी बहुत गरीब था, इतना गरीब कि बेचारे के जूते फट गए, जूते फट गए, फेंक दिए, नंगे पांव चला जा रहा है, इतना भी पैसे नहीं कि जूता खरीदे। अब ये समझ रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बदनसीब मैं ही हूँ, जूते भी नहीं है मेरे पास। आगे थोड़ा चला तो एक आदमी को देखा, बेचारा पांव से माजूर है, दोनों पांव ही नहीं है, घिसटता हुआ चला जा रहा है। तो इस आदमी ने एकदम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया, मैं तो अरबपति खरबपति हूँ, मेरे पास पांव तो है, जूते नहीं है तो क्या हुआ। ये मिसालें हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दे कि दुनिया में ऐसे रहे, मुसाफिर की तरह रहे, मुसाफिर की तरह रहे। और जो है आगे जो जन्नत का तस्वुर है कि भाई एक छत है, उसके ऊपर जन्नत है, उसका शौक भाई कब जो है वो जन्नत रोजाना सजाई जाती है, उसमें पौधे लगते हैं, उसके महल बनते हैं, असल जगह जो है वो वहां पर है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने 1000 से ऊपर किताबें लिखी हैं। एक छोटा सा रिसाला लिखा है, बहुत काम का है, जजाउल आमाल, आज जो है उसकी एक आखिरी मंजिल तकरीबन पढ़ी जाएगी। इसमें हजरत ने वो शुभात जो लोगों को पैदा होते हैं अपनी अकल से, जो बाज जगहों पे हम देखते हैं माशरे में गुनाह है, चीजें चल रही हैं, लोगों की समझ में नहीं आ रहा तो लोग गुनाह क्यों करते हैं, और उसके जो शुभात हैं उनका जवाब दिया है। बहुत काम की बात है, खुद भी सुनिए और अपने जो है पास पड़ोस महल्ले में कभी कोई बात हो तो उनको ये बात अगर हम अर्ज कर दें तो बहुत फायदा होगा। हजरत फरमाते हैं कि एक शुभा लोगों को ये हो जाता है कि अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, मेरे गुनाहों की वहाँ क्या हकीकत है, इसलिए जो चाहो गुनाह करो। उसका जवाब यह है कि बेशक वो गफूर रहीम है, मगर कहार व मुंतकिम भी हैं, तो तुमको कैसे मालूम हो गया कि तुम्हारे लिए ज़रूर मग़फ़िरत होगी, मुमकिन है कि बदला होने लगे, इंतकाम होने लगे। फिर कुरान शरीफ से मालूम होता है कि गफूर रहीम उस आदमी के लिए हैं जो पिछले गुनाहों से तौबा करे और आइंदा अपने अमल की इस्लाह करे। तो अपना एतकाद अकीदा ठीक रखना है। दूसरा हजरत ने शुभा लिखा है, ये किताब जो है यानी बहुत पहले 100 साल के करीब पहले लिखी गई, लेकिन चीज़ वही है क्योंकि इंसान की तबीयत वही है। आजकल के माहौल में भी यही डिबेट चीज़ें होती रहती हैं, लोग इसमें बहस मुबासा करते हैं। एक शुभा ये होता है लोगों को कि मियाँ अभी क्या जल्दी है, आगे चल के तौबा कर लेंगे, मियाँ अभी क्या जल्दी है, आगे चलकर तौबा कर लेंगे। उस आदमी से कहना चाहिए कि तुमको कैसे मालूम हो गया कि अभी और जिंदा रहोगे, मुमकिन है कि रात को सोते के सोते रह जाओ, अगर जिंदगी भी हुई तो तौबा की शायद तौफीक ना हो। याद रखिए कि गुनाह जिस कदर बढ़ता जाता है दिल की स्याही बढ़ती जाती है, और रोज बरोज तौबा की तौफीक कम हो जाती है, यहाँ तक कि अक्सर बगैर तौबा के मर जाता है। तीसरी बात हजरत ने लिखी कि एक शुभा लोगों को यह होता है कि मियाँ गुनाह तो कर लें फिर तौबा करके माफ करा लेंगे, गुनाह कर लें फिर तौबा करके माफ करा लेंगे। हजरत ने लिखा इस आदमी से कहना चाहिए कि जरा अपनी उंगली आग के अंदर डाल दो फिर हम उस पर मरहम लगा देंगे। मरहम मौजूद है घर में, इलाज हर चीज का, बस जरा आग में उंगली डाल दीजिए फिर मरहम हम लगा देंगे। वो हरगिज गवारा ना होगा, फिर अफसोस कि गुनाह पर कैसे जुरत होती है, उस आदमी को कैसे मालूम हो गया कि तौबा की तौफीक जरूरी हो जाएगी। फिर बाज गुना ऐसे हैं कि उनमें सिर्फ अल्लाह के सामने तौबा करना काफी नहीं, बल्कि साहिब हक दूसरे आदमी से भी माफ कराने की जरूरत है। ये बहुत जो है दिलचस्प जो है वो लोगों के जहन में ख्यालात होते हैं, हजरत ने जवाब दिए हैं। एक शुभा लोगों को ये होता है कि हम क्या करें, हमारी तकदीर में यूं ही लिखा है। और ये शुभा बहुत लोगों को होता है कि हम क्या करें, हमारी तकदीर में ऐसा ही लिखा था, यानी गुनाह करने के बारे में। तो साहिबो जरा इंसाफ कीजिए, जिस वक्त गुनाह करते हो क्या इस नीयत से करते हो कि हमारी तकदीर में लिखा है लाओ इसलिए कर ले? कहते हैं हरगिज़ नहीं, उस वक्त इस मसले का होश भी नहीं रहता। जब गुनाह से फारिग होते हैं तो फुर्सत में ये बात सोचती है। दूसरी बात यह है कि अगर तकदीर पर ऐसा ही भरोसा है तो दुनिया के मामलात में इस मसले पर क्यों नहीं एतमाद? जब कोई आदमी तुम्हें जान और माल का नुकसान पहुंचा दे तो उस पर हरगिज़ गुस्सा मत करो, समझ लो कि उसकी तकदीर में यही लिखा था कि तुमको मारेगा। हमारी तकदीर में यही था कि पिटाई होगी, फिर क्यों उससे बेचारे से शिकायत? एक शुबा ये होता है कि यहाँ अगर किस्मत में जन्नत लिखी है तो जन्नत में जाएंगे, और अगर जहन्नम लिखी है तो जहन्नम में जाएंगे, मेहनत मशक्कत सब बेकार। ऐसे ऐसे शुबा शैतान नफ्स ये डालता रहता। उन लोगों से ये कहना चाहिए कि अगर ये बात है तो दुनिया के मामलात में क्यों तदबीर और कोशिशें करते हो? खाने के लिए इतना एहतमाम करते हो, फसल बोते हो, उसको काटते हो, पीसते हो, छानते हो, गूंथते हो, पकाते हो, लुकमा बनाकर मुंह में ले जाते हो, चबाते हो, निगलते हो, कुछ भी ना किया करो, अगर किस्मत में है आप ही आप लुकमा बन के पेट में उतर जाया करें। नौकरी क्यों करते हो, खेती क्यों करते हो, निकाह क्यों करते हो, आप ही आप जो चीज होना होगा तकदीर में हो जाए। बाज लोगों को ये शुबा हो जाता है कि अल्लाह को हमारी ताअत और आमाल की परवाह ही क्या है, अल्लाह इतने बड़े हैं, अल्लाह के हमारी चीज की क्या हकीकत, हम करें ना करें। साहबों ये सच है कि अल्लाह को किसी के अमल की परवाह नहीं, मगर क्या आपको भी इस नफे की परवाह नहीं जो नेक अमल पर मिलते हैं? क्या नेक अमल में आपका भी कोई फायदा नहीं? खुलासा यह है कि अमल तो आपके लिए मुकरर हुआ है, अल्लाह ताला के नफा के लिए नहीं हुआ। उसकी मिसाल ये बहुत ज़बरदस्त मिसाल है, खुद भी याद रखें और जहां भी ऐसा कोई मसला हो तो लोगों को समझाएं। हजरत ने लिखा है, मिसाल ऐसी है कि कोई हकीम, बहुत मेहरबान हकीम साहब हैं, डॉक्टर हैं, उसने मरीज पर रहम करके कोई दवा बता दी कि ये दवा खाओ। अब मरीज अपनी जान का दुश्मन ये कहकर टाल दे कि साहब दवा पीने से हकीम साहब का क्या फायदा होगा, दवा पीने से हकीम साहब का क्या फायदा होगा, तो भले मानस हकीम साहब का क्या फायदा होगा, आपका फायदा है कि मर्ज से सेहत हो। ये जो है मुख्तलिफ किस्म के शुभात लोगों को, एक अमल में सुस्ती हो रही है और गुनाह नहीं छूट रहे, तो ऐसी ऐसी तावीलें और शैतान ऐसी चीज़ें लाता है। इसलिए हजरात उलमाए कराम ने उसके जवाबात दिए हैं कि आदमी इनको सोचे और अपना अकीदा ठीक करे। अल्लाह ताला हमें जो है सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज के माशरे में गुनाह और चीज़ें इतनी हो गई हैं, आम तौर से बाज़ दफ़ा महसूस नहीं होता, लेकिन हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिन लोगों को चश्मे बसीरत अता फरमाते हैं उनको गुनाहों की हकीकत भी नज़र आ जाती है, अल्लाह वालों को गुनाह नज़र आ जाते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सही रवायत में है कि जिस वक्त कोई आदमी वुज़ू कर रहा होता या गुसल कर रहा होता तो आप उसके बहते हुए पानी में गुनाहों की शक्लें देख लेते थे कि ये फला फला गुनाह बहते हुए जा रहे हैं। एक और बुजुर्ग थे, वो अपने घर से निकलते तो अपने चेहरे पर कपड़ा डाल लेते थे। किसी ने उन बुजुर्ग से पूछा, हजरत आप जब भी बाहर निकलते हैं चेहरे पर कपड़ा डाल देते हैं, क्या वजह है? बुजुर्ग ने फरमाया कि मैं कपड़ा उठाकर बाहर नहीं निकल सकता, जब मैं बाहर निकलता हूँ तो किसी इंसान की शक्ल नजर नहीं आती, ऐसा लगता है कि कोई कुत्ता है, कोई खिंजीर है, कोई भेड़िया है, कोई गधा है। ऐसी नूरानियत, ऐसी रूहानियत अल्लाह ताला ने अता फरमाई कि जो आदमी के जो आमाल हैं उनको शक्ल में नज़र आ जाते, तो इंसानों की शक्लें उनको इन सूरतों में नज़र आ जाती थी कि गुनाह उन शक्लों में होकर सामने आ जाते थे। शेख फरमाते हैं, चूंकि गुनाहों की हकीकत से हम वाकिफ नहीं इसलिए हम उनको लज्जत और राहत का जरिया समझते हैं, असल में वो गंदगी है और नजासत है और आग है और जुल्मत है। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह। मुसलमान जो है वो गैरों की नक्काली करके कुरान हदीस को अल्लाह के हुक्म को छोड़ के कभी नहीं तरक्की कर सकता। ये किस्सा जो है वो बताया जाता है, बाज मरतबा यानी अकल लगाते हैं लोग दीन के अहकाम में और दीन का सही समझ नहीं है, उसका एक किस्सा जो है उससे बात शायद याद रह जाए कि एक साहब बहुत अमीर थे, उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपने बच्चे को वसीयत की, नसीहत की कि एक हमारे जानने वाले एक मेहमान आएंगे, उनका बहुत इज्जत इकराम करना, उनको बहुत ऊंची जगह पे बैठाना और जो है जो सबसे कीमती चीज़ हो वो उनको खिलाना और जो सबसे भारी कीमती कपड़े हों वो पहनकर उनके सामने बैठना। अब मेहमान आया तो अमीरजादे ने कहा मेरे मरहूम बाप की ये वसीयत थी, मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगा। उनको क्या समझ में आया, उन्होंने नौकर को कहा कि मेहमान को पकड़ो और जो मचान होता है कैबिनेट ऊपर में एक जगह होती है, संदूक रखते हैं ऊपर में दीवार के ऊपर, वहाँ पे जाके बैठाओ। बड़ी मुश्किल से मेहमान को सीढ़ी चढ़ा के वहाँ पे जाके बैठाया। फिर एक ऐसा शोरबा सालन पकाया गया कि बहुत अजीब सा था, वो लाके उसके सामने रखा गया और जो अमीरजादे थे वो उन्होंने कारपेट कालीन को उठाया और अपने ऊपर लपेट लिया कपड़े के तौर पर और आकर बैठ गए हजरत दुआ सलाम कर। उन्होंने कहा भाई ये क्या मुझे यहाँ बैठाया है और तुम कालीन पहनकर आ गए और ये क्या चीज़ पका के ले आए। कहने लगे अब्बा ने कहा था कि मेहमान को बहुत ऊंची जगह पे बैठाना तो आपको वो बिल्कुल ऊंची मचान पे मैंने बैठाया है, और कहा मेरे पास सबसे कीमती चीज़ एक कुत्ता था, कुत्ता रखना नहीं चाहिए घर में, ये सबक के तौर पर बाहर कहीं होगा, तो वो कहने लगे मैंने आपके लिए अपना कुत्ता ज़बह करके आपको दे दिया कि ये खाइए। और तीसरी चीज़ ये थी कि मेरे पास सबसे कीमती कपड़े जो है वो कालीन था कारपेट, वो पहन कर आ गया। तो ये जो है जब अकल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग दीन के मामले में तो ऐसी चीज़ों को उल्टा कर देते, चीज़ों को ऐसा उल्टा कर देते हैं। अभी वक्त नहीं है लेकिन इससे मुतालिक जो है और भी किस्से हैं जिनसे बात समझ में आ जाएगी। शैतान का काम है कि सबसे खराब गंदी नुकसानदेह चीज़ को नहायत खूबसूरत पैकिंग में लगा के पेश करना। ये लीजिए, शैतान का काम है सबसे खराब गंदी नुकसानदेह चीज़ को बहुत खूबसूरत बनाकर पेश करना। और जो है गुनाह का नुकसान, दुनिया में बहुत नुकसान होते हैं, रिस्क ज़ाहरी आमदनी खाना पीना उसमें नुकसान हो जाता है, रिस्क बातनी आदमी इल्म हुनर भूल जाता है, हाफजा ख़राब हो जाता है, सेहत ख़राब हो जाती है, खूबसूरती चली जाती है, अकल उल्टी हो जाती है, बुराई को अच्छाई समझने लगता है, ये सब गुनाह के नुकसान आते हैं। अब उसका हल क्या है, इस्तिग़फ़ार, हर वक्त तौबा तौबा जो है अल्लाह ताला की तरफ रुजू, अल्लाह कोई और दरवाज़ा नहीं, वहीं वापस आना है। कुरान शरीफ में हमारी नसीहत के लिए अम्बिया अलैहिस्सलाम के इस्तिग़फ़ार और दुआ बयान किए गए बार बार, बाबा आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम उनकी तौबा बयान की गई, शाही मजमून माफ़ी नामा सिखाया गया कि हमारे दरबार में आओ तो ऐसे मांगो। आदम अलैहिस्सलाम से एक भूल हो गई, तौबा कर ली, अंजाम देखा तो इतना बड़ा दर्जा मिल गया। शैतान से एक भूल हो गई, अकड़ गया, अंजाम दी, हमेशा क़यामत तक के लिए जो है वो उसको निकाल दिया गया। जब अल्लाह की रहमत जोश में आती है तो किस तरह जो 99 इंसानों के कातिल की तौबा कबूल हो जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको जिन्होंने कत्ल किया वहशी, उनकी भी तौबा कबूल हो गई। मसाइल का हल है कि हम अपनी भी तौबा करें और उम्मत को तौबा पर लाएं, बंदे बंदियों को भाइयों बहनों को अल्लाह का महबूब बना देना, इस पर जो है उसके लिए दुआ, उसके लिए शौक, उसके लिए ज़ौक, इसकी कोशिश, इसकी कोशिश। एक जो है आखिरी बात पढ़ी जाएगी उसके बाद दुआ होगी। गुनाहों का समुंदर रहमत इलाही की वसात, गुनाहों का समुंदर अल्लाह की रहमत की वसात। एक आदमी ने 70 साल अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दिए, 70 साल के बाद कहता है नदामत से शर्मिंदगी से कि ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, तो अल्लाह ताला उससे ये नहीं कहते कि मैं माफ़ नहीं करता, तूने 70 साल नाफरमानी की है, बल्कि जैसे ही बंदा तौबा करता है तो 1 सेकंड में अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देते, इतनी बड़ी रहमत। बाज़ लोग गुनाहों की कसरत की वजह से अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं, ऐसे समझते हैं कि गुनाह बहुत हैं बहुत हैं। अब बेचारा नादान समझता है कि इतने गुनाह कैसे माफ़ होंगे। उसकी मिसाल ऐसी है कि एक आदमी, फ़र्ज़ कीजिए, सर से पांव तक गंदगी में लगा हुआ है, गंदगी नजासत नापाकी में पूरा बदन लथपथ है। अब दरिया के किनारे खड़ा है और दरिया को कहता है, दरिया को कहता है कि मैं इतना गंदा हूँ, इतना गंदा हूँ, किस मुंह से मैं दरिया में उतरूं? अगर मैं तुझ में उतर गया तो मेरी गंदगी तुझको भी गंदा कर देगी और मेरी नजासत की वजह से तू भी नापाक हो जाएगा। आदमी और दरिया में बातचीत हो रही। उसके जवाब में दरिया कहता है कि अरे तेरे जैसी गंदगियां हजारों यहाँ चलती हैं, तेरे जैसी गंदगियां हजारों यहाँ चलती हैं, तू आकर देखो, तेरी गंदगी भी साफ हो जाएगी और मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक आदमी के नहाने से क्या समुंदर नापाक हो जाएगा? हजरत फरमाती हैं कि हमारी मिसाल ऐसी है, समुंदर एक मखलूक है, उसमें दुनिया भर की गंदगियां डाल दी जाएं तो भी नापाक नहीं होता, सारी नापाकी खत्म कर देता है। तो अल्लाह ताला की रहमत का हमारे गुनाहों से क्या बिगड़ता है? अल्लाह की रहमत का छींटा सारे दुनिया के गुनाहों की गंदगी धोने के लिए काफ़ी है। इसलिए जो है भाइयों बहनों, हम तौबा करें और दूसरे लोगों को, उम्मत को भी तौबा कर लें। अल्लाह ताला हमें सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बे करीम की बारगाह में हर चीज़ के ख़जाने हैं और हर मसले का हल है, और दुआ हमेशा कबूल होती है। उसकी शक्लें अलग अलग हैं, अपनी ज़बान में दिल की गहराई के साथ दुआ मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला से मचल मचल के मांगना चाहिए कि अल्लाह आप नहीं देंगे तो और कौन देगा, आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, सुबह से शाम तक मांगते रहे मांगते रहे, फिर देखें कि कितना मिलता है, क्या मिलता है। जब आदमी अपना मकसद ज़िंदगी पहचान लेता है तो एक आम सा मुसलमान हज़ारों लोगों की हिदायत का ज़रिया बन जाता है। कोई भाई या बहन हज़ारों लोगों की हिदायत का ज़रिया बन जाता है। आपके दिल में हीरे मोती जवाहरात कीमती सिफात छुपी हुई हैं, अगर आप उनको तलाश करें, सही इस्तेमाल करें, आप अपने घर के लिए, ख़ानदान के लिए, शहरों के लिए हिदायत का ज़रिया बनेंगे। अपने और घर वालों की इस्लाह दीनदारी के लिए इस तरह के हलकों में, फ़ज़ाइल की तालीम में शिरकत फरमाएं और हर आदमी एक आदमी और लेकर आए, हर आदमी एक आदमी और को दावत दें तो तरगीब होगी, सबकी खैरख्वाही खिदमत दुआ हो। और मर्दों को अल्लाह वालों के पास भेजिए, अल्लाह वालों के बयानात सुनिए, उनकी किताबें पढ़िए, तो उससे जो है हमें अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होगा। अब जो है इंशाल्लाह दुआ होगी, इस दुआ के दरमियान में कुछ एक दो मिनट खामोशी अख्तियार की जाएगी कि जो लोग अपनी दुआ खुद मांगना चाहते हैं वो भी इस मुबारक मजलिस में मांग लें। एक तो इज्तमाही दुआ है, फिर दरमियान में वक्फा होगा, उसमें अपनी दुआ मांग लें, प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद फिर आखिरी दुआ ख़त्म होगी इंशाल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا كريم يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله هم گنہگار ہیں آپ بخشنے والے بہت مہربان ہیں يا الله هم غلطیاں کرنے والے ہیں آپ معاف کروانے والے ہیں یا اللہ ہم فقیر ہیں اور آپ بہت بڑے بادشاہ بہت دینے والے ہیں یا اللہ ہم کمزور ہیں اور آپ قبول کرنے والے ہیں ہمارے عمل بہت کمزور ہیں یا اللہ آپ قبولیت دے کے نیکیوں کے پہاڑ دینے والے ہیں یا اللہ ہم جاہل ہیں آپ ہی علم اور ہدایت دینے والے ہیں یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آپ کے خزانے میں سب کچھ ہے یا اللہ ہم ناشکرے ہیں اور بے صبرے ہیں مگر آپ نعمتوں پر نعمتیں دینے والے ہیں یا اللہ ہماری توبہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے مگر آپ اپنے دربار سے نہیں نکالتے ہم لوگ بے ادبی کرتے ہیں پھر بھی آپ بہت مہربان ہیں یا اللہ یا رحمان یا کریم یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم اللہ آپ کے نزدیک ہر پوشیدہ چیز ظاہر ہے دنیا کے سارے اسباب آپ کے ارادے کے ساتھ مسخر ہیں یا اللہ آپ کے ایک اشارے میں سارے عالم کی پیداوار ہے سارے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں سارے لوگوں کے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں یا اللہ آپ کا شکر ہے تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر آپ کے عرش کے وزن کے برابر آپ کے کلمات کی تعداد کے برابر یا اللہ آپ کا شکر ہے ہر پلک جھپکنے کے وقت ہر سانس لینے کے وقت یا اللہ آپ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں مغفرت کے خزانے صحت عافیت چین سکون کے خزانے عزت امن سلامتی کے خزانے مال اولاد کے خزانے یا اللہ ہمیں ہر بھلائی عطا فرمائیے ہر برائی سے بچا دیجیے یا اللہ ہمارے سارے گناہ اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سب معاف فرما دیجیے یا اللہ غلطیوں پر پردہ ڈال دیجیے یا اللہ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے یا اللہ مکمل توبہ کی توفیق عطا فرمائیے या अल्लाह आप जमीन आसमान के नूर हैं, मजलूम और बेचारों बेकसों की सहारा है। या अल्लाह सबको सेहत आफियत तंदुरुस्ती इत्मीनान आसान रिस्क अता फरमाइए। या अल्लाह बच्चों को आँखों की ठंडक बनाइए। या अल्लाह माल औलाद में बरकत अता फरमाइए। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामला आजला अता फरमाइए। या अल्लाह उम्मत में जो लोग दुनिया से गुजर गए तमाम मरहूमिन की मगफरत फरमाइए, उनके जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जात अता फरमाइए। या अल्लाह जो लोग बेरोजगार हैं उनको आफियत के साथ आसान रोजी अता फरमाइए। जो वालदैन बच्चियों के रिश्ते के लिए परेशान हैं या अल्लाह उनको आसान नेक सालेह रिश्ते अता फरमाइए। या अल्लाह आप करीम हैं, या अल्लाह बगैर इस्तेहकाक के अता फरमाते हैं। या अल्लाह आपकी जितनी रहमतें बरकतें उतरती हैं या अल्लाह रात के आखिरी पहर में उतरती हैं, रमज़ान में, काबा शरीफ में, हज उमरे के दरमियान, औलिया की मजालिस में, या अल्लाह आपकी जितनी रहमतें उतरती हैं सुबह शाम, या अल्लाह हम उन सब के मोहताज हैं। या अल्लाह हमारा कोई इस्तेहकाक नहीं है, हमारा कोई हक नहीं, हम नालायक हैं। या अल्लाह आप करीम हैं, नालायक को भी दे देते हैं। या अल्लाह अपनी रहमत करम फजल से एहसान से अता फरमाइए। या अल्लाह हर हर सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाइए। या अल्लाह हर हर गुनाह से बुराई से हमें बचा दीजिए। या अल्लाह दुनिया में जितने नेक काम हो रहे हैं या अल्लाह उनको बढ़ा दीजिए। या अल्लाह हमारे ख़ानदान में, पास पड़ोस में, घरों में जो लोग दीन की मेहनत नेक काम कर रहे हैं या अल्लाह उनको उनको सेहत ताकत आफियत उसमें बरकत अता फरमाइए। या अल्लाह दुनिया में जितने गंदगी बेहयाई बुराई के काम हो रहे हैं या अल्लाह उन सबको ख़त्म फरमाइए। या अल्लाह उम्मत की मगफरत फरमाइए। या अल्लाह उम्मत को सेहत आफियत चैन सुकून अमन अता फरमाइए। या अल्लाह जो भाई बहन यहाँ पर जमा होते हैं जो उन्होंने जो बात सुनते हैं या अल्लाह उन सबको, या अल्लाह उन सब के दिलों में जितनी हाजात हैं या अल्लाह उन सबको ग़ैब से पूरा फरमाइए। या अल्लाह हम सब अपनी अपनी हाजात आपसे मांगते हैं। या अल्लाह हमें आप हमारे दिल के सारे अहवाल आपके पास आप जानते हैं। या अल्लाह रहमत का, फजल का, करम का, एहसान का मामला फरमाइए। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين